अब हमें और क्या चाहिए, हाथ में ले लिए हाथ ने, अब हमें और क्या चाहिए।
ओम शांति। और अभी हम सबके सामने हमारे वरिष्ठ भ्राता मोहन सिंघल जी हैं। हम सभी एक हाथ से खूब खूब हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने हैं, क्योंकि वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि आएंगे, परंतु आपने तैयारी बताई कि नहीं मैं आऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ज्ञान सरोवर में साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग की कॉन्फ्रेंस चालू है, अभी पूरा हुआ आज, परंतु फिर भी गेस्ट तो है, कल जाएंगे सभी। बहुत अच्छे टॉपिक पर कॉन्फ्रेंस थी, वर्क लाइफ बैलेंस। भाई साहब बहुत अच्छे नए नए टॉपिक सोचते हैं और बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाते हैं। आप इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और जैसे मैंने कहा वरिष्ठ भ्राता है हमारे अभी, और एकेडमी के भी आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम सबके सामने आप तो बहुत अनुभवी हैं, साकार बाबा के साथ 7 साल बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ का अनुभव है। और विशेष बात है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उस वक्त भी आप मधुबन में थे, तो मैंने भाई साहब को बोला आप थोड़ा वो अनुभव सुनाइए, कहानियां सुनाएंगे, ओके, तो सब फ्रेश रहेंगे। उसे मजा आता है ना। भाई साहब ने भी कहा कि मैं ऐसी बातें सुनाऊंगा जो सबको बहुत आनंद आएगा, तो इसीलिए हम सभी भी साकार बाबा के साथ साथ हो जाएंगे। जब आप सुनाएंगे तो हम सभी भी साथ साथ अनुभव करेंगे। ओम शांति। भाई साहब
ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके मानसिक रूप से यज्ञ के शुरुआत में पहुंच जाते हैं, जब बाबा सबसे ओम ध्वनि कराया करते थे। गहरी श्वास एक बार अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरी श्वास निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ मुरली में अक्सर कहते हैं, अभी पुराने हिसाब किताब चुकतू करने का समय है और नए हिसाब किताब क्या करने हैं, कोई भी बनाने नहीं है। बात बहन जी टॉपिक्स की बात बता रहे थे, कुछ शक्तियों का टॉपिक का बता रहे थे, तो मैंने कहा कि जो शक्तियों की साकार मूरत ब्रह्मा बाबा से इस संगम युग में मिलने का सौभाग्य मिला, और मिलने का ही नहीं बाबा से काफी पालना लेने का भी सौभाग्य मिला, तो थ्योरेटिकल कोई शक्तियों की बात या वो की जाए, उसकी साथ साथ जो उसका संपन्न रूप साकार रूप ब्रह्मा बाबा को देखा, तो उस रेफरेंस में ही अगर हम सब लोग बात करेंगे तो वो बात सहज ही बुद्धि में उतर जाती है। और साथ ही साथ बहन जी ने जैसे कहा ना, अभी तंदूरी रोटी खाई ना, तो उसके बाद थोड़ा सुस्ती आने की संभावना रहती है, लेकिन अगर कोई इवेंट्स सुनते हैं तो शायद इतना सुस्ती ना भी आए। तो देखो बाबा के हर बात में क्या रहस्य समाया हुआ होता है, उसको साथ में रखते हुए हम कुछ इस संबंध में बात करना चाहते हैं, क्योंकि संपन्न तो हम सबको बनना है, कर्मातीत बनना है। अब बाबा से पालना ही नहीं ली, बल्कि 17 और 18 जनवरी 1969 दो दिन बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को यही मधुबन में देखने का मौका मिला, एक एक पल वहां पर। तो उसको भी हम कुछ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि कर्मातीत तो हम सबको बनना ही है, तो बाबा की बात वो कर्मातीत वो एक बहुत आपस में हम लोग कुछ शेयर करेंगे। मैं शुरुआत वहां से करता हूं। देखो बाबा कैसे हम सब लोगों को अपनी पुराने जीवन की बात भुला देना चाहता है। भूल जाओ कि कोई ये शूद्र का जीवन था, जिस दिन से जगे उस दिन से ब्राह्मण जीवन नया जीवन शुरू हुआ। और बाबा ने एक बात स्पष्ट की है, इसीलिए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का भी गायन है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई 50 साल पुराना ज्ञान में है या 80 साल पुराना ज्ञान में है, बल्कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम कितना निर्विघ्न चल रहे हैं वो काउंट करता है। कोई 80 साल 70 साल से ज्ञान में वो नहीं, बल्कि 5 साल से भी अगर हैं लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बहुत नहीं है, माया से हार नहीं खाई है संकल्पों में और किन्हीं चीजों में, तो वो ज्यादा महानता है बनिस्पत उसके कि 50 साल से ज्ञान में। तो इसलिए एक बात तो बाबा हमेशा कहता है ये रखें कि जब से मेरा नया जीवन शुरू हुआ है तब से मुझे अपने जीवन में ये देखते चलना है कि कैसी भी परिस्थिति आए मुझे हार नहीं खानी। दूसरी बात, बाबा ये चाहता है पुरानी बात भूल जाएं, तो इसका प्रत्यक्ष में हमने ये देखा इस रीति से कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे और कानपुर में बाबा आए थे। जैसे अभी दादियां जाती हैं, ऐसे जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो जहां जहां मुख्य सेंटर थे, बंबई था, दिल्ली था, बेंगलोर था और कानपुर था आदि आदि, तो बाबा मामा वहां जाया करते थे। बात है सन 1962-63 की, 62-63 की। तो लखनऊ वालों ने सोचा वहां से 2 घंटे का ही रास्ता है कानपुर का, कि चलो हम सब लोग कानपुर में बाबा से मिलके आते हैं। प्लान बनाया, बस बुक करी, सुबह पहुंचे बाबा के पास। पहुंचना तो था जल्दी, निकल के 5:30 निकल के 7:30 तक पहुंचना था, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गई और पहुंचे 8:30 बजे। तो बस देखा मुरली पूरी हो गई थी। बाबा जैसे बाद में चैम्बर, पहले एक चैम्बर हुआ करता था, मुरली हो जाती थी तो थोड़े काफी लोग चले जाते थे, थोड़े लोगों के साथ बाबा ज्ञान की गुह्य बातें रूरुआन किया करते थे। तो वो बाबा वो कर रहे थे, सब पहुंचे, सब बाबा से एक एक करके मिले। हम तो बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे तब। तो लास्ट में नंबर आया, पहले तो सारे बड़ों का, तो बस जब नंबर आया बाबा ने दृष्टि देकर जैसे बाबा खो गए और कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, आवाहन कर रहा था। हम तो नए ज्ञान में थे, हमने कहा हाँ बाबा, बस लेट हो गई इसलिए थोड़ा लेट हो गए। हम तो उस रीति से सोचा बाबा बहुत समय से इंतजार कर रहा है, आना था तो 7:30 और आए 8:30-9 बजे, तो लेट हो गए, तो रीजन तो बाबा को बताना पड़े ना। तो बाबा ने कहा अच्छा बस लेट हो गई, ऐसे बड़े गुह्यता से। फिर कहा नहीं बच्चे, बाबा बहुत समय से तुम्हारा बच्चों का आपका आवाहन कर रहा। तो देखो बाबा को ना कितना कलप, पहले के बिछड़े हुए हम बच्चे तो बाप को कितनी खुशी होती है, बाबा ने आह्वान करके हम सबको बुलाया है, याद किया है। एक तो ये नशा रहना चाहिए इस संगम में, हमने बाबा को नहीं ढूंढा बल्कि बाबा ने हमें ढूंढा है, नंबर एक बात। सदा नशा चढ़ाने की युक्ति बाबा बताता है ना। दूसरी बात, बाबा ने पूछा फिर क्या नाम है बच्चे ना, तो हमारा एक्चुअली लौकिक नाम जो है मतलब श्री है, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होता है ना, तो श्री एक्चुअली नेम है। तो हमने बताया बाबा को श्री, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे क्या बोला, फिर हमने बताया श्री। अच्छा, तो बाबा ह्यूमरस, सबसे बड़ी बात होती है हम बच्चों को ये सीखने का है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके साथ हम उस रीति से व्यवहार करें। बच्चों के साथ बाबा बिल्कुल बच्चा हो जाता था, युवानों के साथ युवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसा। तो आई वॉज यंग, उस वक्त मैं बिल्कुल यंग थे, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे श्री, अरे दादी आओ आओ। बाबा के साथ सब बड़ी बड़ी दादियां, दादी प्रकाशमणि, मनमोहनी दीदी, वहां पर कानपुर में गंगे दादी होते थे एक, वो रहते थे। आओ आओ, आओ गंगे आओ आओ, दीदी आओ आओ आओ। आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है। हाँ, ऐसा हो सकता है? हाँ, कोई तो समझे टोंटिंग रूम में कोई कह रहा है, हम भी नहीं समझे, ज्ञान में तो 6-8 महीना हुआ था तब। तो फिर हम तो देखते रहे, तो बाबा ने उसका रहस्य बताया कि देखो बच्चे, श्री तो अभी ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, कोई भी नहीं लगा सकता है। किन के नाम के आगे श्री लगता है? हाँ, मतलब किन आत्माओं के? देवी देवताओं तो थे, लेकिन देवी देवताओं के नाम के आगे भी क्यों लगता है श्री? उनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, दोनों डबल पवित्र, क्योंकि शरीर भी विकार से पैदा नहीं होता है और आत्मा भी सतयुग के प्रारंभ में तो पवित्र होती है। तो इसीलिए तो जिसके आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र वो ही श्री लगाने का अधिकारी है। अभी ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता और तुम अपने नाम के में श्री लगा के बैठे हुए हो, मतलब चिटचैट में बाबा ने कहा। तो बाबा आज से नाम तुम्हारा बदल देता है, अभी श्री जैसा बनना है, आज से तुम्हारा नाम मोहन। तो ये बाबा ने नाम बदल दिया। तो इस तरह आप सब भी समझो कि आप सबका भी, हाँ, इस तरह बाबा, किसी का नाम माया देवी होता था तो बाबा कहता था अरे बच्ची अब माया का क्या काम, अभी तुम्हारा माया नाम कैंसिल, कुछ भी गीता देवी या लक्ष्मी देवी, कुछ भी जो बाबा को उपयुक्त लगता था। हाँ, चंचल माता चंचल बहन नाम था, उसका नाम अचल कर दिया, इस तरह है ना। और एक भाई का नाम था, हाँ, जैसा सुना है भाई गरीब दास, बाबा ने कहा अरे अब गरीब क्या, अब तुम्हारा नाम अमीर चंद। तो उस तरह भाई मैं इतना अमीर हूँ वो याद हो गया। तो भाव क्या है कहने का, भले अभी बाबा साकार में नहीं है लेकिन पर्पज ये है कि हम पुरानी स्मृति जो कलयुगी है, शूद्र कुल की स्मृतियां हैं, उन्हें हम भूल करके अपने को नया ब्राह्मण कुल का समझे, नाम वर्ण कुल सब चीज हम नहीं रखें। एक ये भाव बाबा का सदा होता है। और क्या बाबा का होता है, देखो बाबा कैसे, भले बाबा कहता है हमें जानी जाननहार नहीं हो ब्रह्मा बाबा, लेकिन हमें तो सदा लगता था बाबा जैसे जानी जाननहार है हर चीज का। मेरा तब लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बोला घर वालों ने भाई जाना है अब आपको वहां पढ़ना है। हमें थोड़ा दिल ये होती थी कि ज्ञान में तो आ गए थे कि हॉस्टल का खाना पड़ेगा, वहां वातावरण में, और धनबाद जहां पर सिलेक्शन हुआ था वहां सेंटर भी नहीं था कोई। तो हमने लौकिक पिताजी को बोला कि भाई हमारी तो दिल नहीं है और हम नहीं जाना चाहते। तो पिताजी ने कहा कि नहीं है, ऐसा कैसे होगा, पढ़ना तो है, चलो। उस समय बाबा थे, बड़ा इजी था, चलो बाबा से पूछ लेते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, हम और लौकिक पिताजी बाबा के पास आए, यही झोपड़ी है ना, तब तो साधारण झोपड़ी थी, इतनी बढ़िया नहीं बनी हुई थी। तो टाइम दिया, लच्छू दादी होती थी वो टाइम देती थी, तो टाइम दिया। तो हम लोग तीन अलग अलग कुमार उस समय आए हुए थे और हर एक की लगभग एक जैसी ही ये प्रॉब्लम थी, लेकिन सबको बाबा ने टाइम दिया था तो इसीलिए वो टाइम देने के साथ साथ उन्होंने क्या करा कि पहले एक भाई गया कुमार, उससे बाबा ने पूछा तो उसने बताया बाबा मेरी पढ़ाई जो है ना, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी क्या करूँ, पढ़ाई करूँ? तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, क्या करोगे पढ़ाई पढ़ के, इतने 4-5 साल का कोर्स है और अभी सेवा में लग जाओ। तो उसने कहा ठीक है। बाहर आया, उसने बताया ये। फिर दूसरे भाई का नंबर आया, वो बॉम्बे का था, ये भाई तो इंदौर जोन के थे उधर के। तो दूसरे भाई से पूछा तो उसने बाबा से पूछा, वो बिजनेस बड़ी अच्छी बिजनेस फैमिली का था लेकिन फादर मदर और परिवार कोई ज्ञान में नहीं था, वो अकेला ज्ञान में था। और लौकिक में जैसे होता है, उसके माता पिता ने बोल दिया था भाई अगर तुम ना ज्ञान में चलोगे तो तुम्हारे से हमारा कोई संबंध नहीं, तुम्हें जो कुछ करना हो जाओ। और इस तरह तो उसने अपनी प्रॉब्लम बाबा के सामने रखी। तो बाबा ने बताया कि नहीं, तुम्हें माता पिता के साथ रहना है, उनको सहयोग देना है, उनका दिल जीतना है, बाकी पढ़ाई आगे करने की जरूरत नहीं। तुम्हें उसको भी बोला, पहले को भी बोला था पढ़ाई आगे की जरूरत नहीं, दूसरे को भी बोला, तीसरा हमारा नंबर था, हम गए तो बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें तो पढ़ना है। तो मैंने कहा बाबा ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, हाँ उन हमसे पहले दोनों भाइयों को आपने बोला पढ़ने की जरूरत नहीं, सेवा में लग जाओ, और मुझे आप कह रहे हैं पढ़ना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हर एक की जन्म पत्री अलग अलग होती है। बाबा देख रहा है, बाबा को तुम्हारे द्वारा देश विदेश की बड़े बड़े व्यक्तियों की बहुत सेवा करानी है, इसीलिए तुम्हारा पढ़ना जरूरी है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो अब देखो, उस समय तो ये सोचा कि बाबा ने कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन थोड़े समय में ही उसका राज खुल गया। जो पहला भाई था, जो मतलब जिसको बाबा ने कहा था हाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका कुछ 2 साल बाद ही कोई एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई, उसका शरीर छोड़ दिया। तो देखो, अगर वो पढ़ता ही रहता और बाबा कहता कि नहीं तुम पढ़ो, तो वो पढ़ाई काम में तो आती नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए कितना बड़ा राज समाया था कि अंत में जो 1-2 सालों में 3 साल में उसने जितनी सेवा करनी थी बहुत सेवा करी, सेंटर पर समर्पित हो गया, जितनी कमाई जमा करनी थी कर ली, बहुत अच्छा, बाकी और तो कुछ साथ में जाना नहीं। दूसरा भाई, उसका बिजनेस का बोला तो उसने धीरे बड़े प्यार से माता पिता को बता के, नहीं तो शुरू में यज्ञ में आते हैं तो बड़ा जोश होता है ना, आप सबको भी मालूम होगा, धारणा है, नशा और इतना होता है, किसी को की चिंता नहीं रहती, बस जैसे भगवान मिल गया। तो उसने भी बैलेंस रख के करा, फिर परिवार का सारा बिजनेस भी उसके हाथ में आ गया और माता पिता वगैरह ने भी प्रेस नहीं करा, बहुत अच्छा हो गया। और तीसरा फिर हमारा तो मतलब बहुत अच्छा हो ही गया, बाबा ने जैसे बताया। तो भाव क्या है कि बाबा साकार बाबा ब्रह्मा बाबा में इतनी अनुभव की इतनी शक्ति थी। बाबा कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन एक नजर में बाबा भांप जाता था और फिर उसके अनुसार बाबा उसको जीवन की सारी राय देता था। इस तरह ये हो गया। फिर वहां हम वहां पढ़ने के लिए गए तो मैंने कहा कि बाबा वहां जा रहे हैं लेकिन हॉस्टल में तो ऐसा खाना पड़ेगा, शुद्ध नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे, ये क्या, जब हम दृष्टि से सृष्टि पवित्र कर सकते हैं तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? लेकिन इस बात को इस रीति से नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ना एक तरफ तो ये बोला और दूसरी तरफ बाबा ने ऐसी युक्ति रची कि फर्स्ट ईयर में ही ना, बस बाबा इतना लेटर लिखता था, हम हॉस्टल में रहते थे, मुरली बाबा ने यहीं से डायरेक्ट भेजनी शुरू कर दी कि बस अरे बच्चे वहां मकान ढूंढो, सेंटर खोलना है। और 3-4 महीने में ही ना, फर्स्ट ईयर में ही 3-4 महीने में ही बाबा ने सेंटर खुलवा दिया। और वो देखो, एक तरफ बाबा ने ये कहा कि हॉस्टल में रह के वहीं का भोजन करना है, दृष्टि से भोजन को पवित्र करना है, क्योंकि उस समय बाबा अगर ये कहता कि बच्चे तुम्हें तो हाथ से पका के खाना है, वो नहीं, तो शायद हम ज्ञान में चल भी नहीं पाते, क्योंकि नया नया हॉस्टल में जो भी रूल होते हैं रेगुलेशन उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो एक तरफ बाबा ने ये करा और दूसरी तरफ सेंटर खुलवा दिया, फिर तो बाकी बचे हुए 3.5 साल तक सेंटर पर ही भोजन किया और शुद्ध भोजन भी मिल गया। तो बाबा कैसे हर चीज को दीर्घ दृष्टि से दे देता है, दूरंदेशी बुद्धि से तो सोचा करता था। तो वही हम सब बच्चों को भी इमीडिएट गेन नहीं देखना है, बल्कि दूरंदेश बुद्धि से किस चीज में लॉन्ग टर्म का कल्याण समाया हुआ है उस चीज को देख करके उस पर पालना करनी होती है। कई बार बाबा कहता है ना, बच्चे संकल्प शुद्ध करो, हाँ बाबा तक पहले पहुंच जाता है, इसलिए संकल्पों में महानता होनी चाहिए। अब वहां फर्स्ट ईयर में ही हम थे तो हमारे एक साथी हाँ अभी नीचे ट्रॉमा सेंटर में है, वो विनोद भाई करके, विनोद जैन, वो भी ज्ञान में आ गए तो एक से हम लोग दो हो गए और फिर तो साथ साथ चलने लगे। हॉस्टल में हम रहते थे और पहले तो क्या होता था, शुरू में हर सेंटर पर ब्राह्मणी होती थी, मतलब जिसको कि ध्यान का पार्ट। तो बात चल रही है, कौन सी बात चल रही थी, भोजन की बात चल रही थी या क्या है? क्योंकि संदेश की बात, हम हॉस्टल में रहते थे और पहले हर सेंटर पे ही एक एक संदेश पुत्री होती ही होती थी, 90% तो हमने ही देखा है। भोग लगाते थे, हम हॉस्टल में थे तो एक दिन हॉस्टल में हम लोगों को, हम और विनोद भाई, हमें ख्याल आया कि कल गुरुवार है, चलो कल हम लोग कुछ भोग बना के ले चलते हैं और बाबा को भोग खिलाएंगे। और संदेश पुत्री तो सेंटर में थी, वहां भोग लगता ही था। तो अगले दिन सुबह उठ के हम लोगों ने भोग बनाया हॉस्टल में बड़े प्रेम से, लेकिन बनाते करते लेट हो गया और यूजुअली 7 बजे होता पहुंचना होता था, तो 8 बजने में 5-10 मिनट पर पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो वहां देखा तो संदेश पुत्री तो बैठी हुई थी और भोग सामने रखा हुआ था। तो छोटी बहन को हमने बोला कि भाई हम भोग बना के लाए हैं, आप रख देंगे थाली में क्या? कि हाँ हाँ लाओ जल्दी दो, बहन जी तो बैठे हुए हैं और अभी मतलब ध्यान में नहीं गए हैं। तो उन्होंने रखा और उसके बाद जैसे ही भोग को रखा थाली में, संदेशी को बाबा ने खींच लिया बुद्धि। तो संदेशी ने कहा, बाबा आज मैं इतनी देर से बैठी हूँ, हमेशा तो आप 5-10 मिनट में बुद्धि खींच लेते हो और आज तो मैं 1.25 घंटे से बैठी हुई हूँ, आपने मेरी डोर खींची नहीं है इतनी, क्या तो क्या कहा होगा बाबा ने, पहले ही उत्तर दे दिया ना, बच्ची देखो मेरे दोनों बच्चे इतने प्यार से भोग बना रहे थे और बना के यहाँ ला रहे थे, तो बिना उनका भोग थाली में रख के मैं तुम्हें कैसे बुला लेता, जैसे उनका भोग आया मैंने तुम्हें खींच लिया। तो देखो इसके भाव क्या है कि हम लोग संकल्प, पहले जमाने में ये तो और कुछ होता नहीं था, मोबाइल या इवन फोन भी होते थे, वो लैंडलाइन भी हमारे पास नहीं थी, कुछ नहीं था। स्टूडेंट पीरियड में क्या होता है, तो लेकिन बाबा जो कहता है, हमने अगर संकल्प से कोई चीज बाबा को अर्पण कर दी और संकल्प कर लिया तो वो बाबा तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ी महानता संकल्प में है, हमारे संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। तो इस रीति से कोई भी बात हो, कई चीजों का स्थूल में बंधन होता है, लेकिन संकल्प में अगर दृढ़ता है बाबा को स्वीकार्य हो जाता है। तो इसलिए एक ऐसे बिल्कुल सिंपल बात है, कई बार एक बड़ौदा का अनुभव है बहुत अच्छा। हाँ तब आप सब लोग तो दिल्ली के हो ना, ओआरसी के, बहन जी बड़ौदा का, तो 1965 की बात है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का टूर आया था और बड़ौदा में हम लोग एक हफ्ता ठहरे हुए थे। तब बड़ौदा में सेंटर तो कोई था नहीं, तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे और वहाँ एक भटनागर भाई होते थे, तो भटनागर बाबा ने लिख दिया था उन्हें, तो उनके यहाँ हम जाके भोजन करते थे। और मकरपुरा रोड पर एयरफोर्स का उधर कॉलोनी है, और तो उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई हुई थी, तो सेंटर नहीं था बड़ौदा में, लेकिन एक प्रदर्शनी लगाई हुई थी, तो शाम को हम भी फ्री होते थे तो प्रदर्शनी समझाने चले जाते थे। तो एक बार ऐसी प्रदर्शनी समझा रहे थे मतलब वहां पर, तो एक फॉरेन का डेलीगेशन आया कोई टूर, 15-20 लोग थे, काफी बड़ा, और प्रदर्शनी देखने के लिए आए। तो वहां तब तो बहन भाई थे नहीं, जब सेंटर ही नहीं था तो बहन भाई ज्यादा कहां से होंगे। तो भटनागर जी ने हमें दे दिया वो कि भाई आप इस ग्रुप को समझाओ, और उन लोगों को बोल दिया कि भाई ये भाई समझाएंगे। अब हमें तो एक्चुअली बिल्कुल नया अनुभव था, ये नई प्रदर्शनी बनी थी और उन्हें बताना भी इंग्लिश में था। तो हमने कहा ठीक है आप बैठिए। हम अंदर गए और अभी भी बाबा ने एक दो दिन पहले क्या कहा था इस संदर्भ में, जब बाबा देखता है कि समझने वाले अच्छे आए हैं और समझाने वाला बुद्धू है, नहीं समझा सकता तो बाबा क्या करता है, प्रवेश करके समझाता है। तो हमने अंदर जाके बाबा को बाबा का पाठ ही याद दिलाया, बाबा आप तो ऐसा कहते हो तो आज आप ये करो, ये हमारा शरीर हाजिर है और आज आपको उस पार्टी को समझाना है। तो बस बड़े सच्चे दिल से याद किया और उसके बाद गए। तो पौना घंटे तक, 45 मिनट्स तक ऐसा बाबा ने समझाया कि हमें खुद आश्चर्य हुआ, जो हमें इतनी फ्लुएंसी नहीं थी इंग्लिश बोलने का, कोई भी बात, प्रदर्शनी भी नई बनी हुई थी, लेकिन बाबा ने ऐसा समझाया तो हमें खुद आश्चर्य हुआ और वो लोग भी बहुत सेटिस्फाई होके गए। तो ये तो एक पार्ट है। फिर दो दिन के बाद फिर एक दूसरा कोई डेलीगेशन आया और उन्होंने फिर हमें दे दिया, और हम तो फूल कर कुप्पा हो गए थे कि मैं समझा सकता हूँ इंग्लिश में और ऐसा। तो वो आए तो हमने कहा हाँ हाँ चलो समझाते हैं। अब बाबा का आवाहन नहीं किया, बाबा को समर्पित अपने को नहीं किया, बाबा को नहीं कहा कि भाई बाबा आप आके समझाओ, तो इतनी डिफिकल्टी से थोड़े बहुत कुछ सेंटेंस मुंह से निकलते थे। और पहली बार हमने अनुभव किया ये कि देखो करण करावन हार को जब अपना कार्य कराना होता है ना, तो समर्पित बच्चों से कराता है, और जहां पर भी देह अभिमान आया, जहां पर ये मैं समझा सकता हूं, जो बाबा ने कहा ना मेरा स्टूडेंट है या मैं ऐसे, तो फिर बाबा साक्षी होकर के खेल देख लेता है। तो दोनों चीजों का बाबा ने अनुभव करवाया 3-4 दिन के अंदर, कि बस जब बाबा को हम बिल्कुल समर्पित होके कह देते हैं, ये हमारा इस अनुभव को हम हमेशा सदा बुद्धि में रखते हैं कि कोई भी लेक्चर हो, कोई प्रदर्शनी, किसी भी चीज की सेवा हो, पहले जरूर बाबा का आह्वान करें, बाबा आपका काम है, आपको ये करना है, ये शरीर आपकी सेवा में हाजिर है, आपको ही ये सेवा करानी है, फिर देखो बाबा कैसे कराता है। और जहां तुरंत ही अगर अपने आप करने बैठ गए, हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ भी थोड़ा भी अगर ना ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो उस कार्य में सफलता नहीं होती। तो इसीलिए सदा बाबा अगर कोई सेवा देता है तो हम बाबा को ऑब्लाइज नहीं कर रहे, बल्कि बाबा हमें ऑब्लाइज कर रहा है सेवा देके, अपना भाग्य बनाने का चांस बाबा दे रहा है। तो कभी भी किसी भी हालत में अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो फैक्टर या कोई ऐसा ना हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे द्वारा बाबा ने ये सेवा कराई, फिर बाबा साक्षी हो जाता है। अंत समय हर चीज में यही साक्षी स्वरूप की स्थिति ही अधिकतर काम में आती है, साक्षी दृष्टा जो बाबा कहता है ना, साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं, क्योंकि ये स्थिति ही, अब बाबा की ऐसी स्थिति थी जो हमने देखी, खास करके लास्ट दिनों तक में इतना बड़े से बड़ी घटना भी हो जाती थी, बाबा को आके दादियां या बड़े वरिष्ठ भाई कुछ बताया करते थे, अच्छा बाबा ऐसे साक्षी होके सुन के, चलो बच्चे। एक बार कलकत्ता में प्रदर्शनी लगाई थी, अरे समाजियों ने आग लगा दी, उसमें टेंट जल गया, प्रदर्शनी जल गई, तो बड़े बड़े हमारे तीन वकील हुआ करते थे, संतराम जी, त्रिलोक चंद जी और मोती चंद जी, बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील थे कानपुर के। उन्होंने कहा बाबा हमें उन पे केस करना चाहिए, हमारे कैमरा में ये है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उन्हें मालूम नहीं कि उन्होंने क्या किया है, ये अज्ञानता वर्ष है। अब बाप कभी भी बच्चे पर केस नहीं कर सकता। देखो कितनी महानता, कहने की बात नहीं, लेकिन इतनी महानता तब आ सकती है जब दिल में क्षमा भाव होगा, उनके लिए ऐसी भावना रहम की दृष्टि होगी, तभी हम ये कर सकते हैं। बिना रहम की दृष्टि के हम ये भाव नहीं कर सकते। तो आज आवश्यकता इस बात की ही है कि हमें अपने अंदर रहम की दृष्टि, इसकी पालना करने की बहुत आवश्यकता है। चलो सॉरी, ये जो आ रहा है, तो एक इस बात की आवश्यकता। और क्या हमने ये देखा, तो हम अपने अंदर ये चीज चेक करते चले बाबा की तरफ, क्या मेरे में अंदर भी क्षमा भावना है, रहम की दृष्टि है, हम किसी को सहज रीति से इस तरह क्षमा कर सकते हैं। फिर बाबा का हमने और देखा क्या, धीरे धीरे जितना बाबा संपूर्णता की तरफ बढ़ते जा रहे थे, सारा समेटते जा रहे थे अपनी चीजें। अब मुझे भी ये देखना है, बाबा ने जो कहा है पेपर आएगा अचानक और एवर रेडी का, तो इसका भाव क्या है अचानक और एवर रेडी का, कि हमारा अंत समय में भाई जब प्राण तन से निकलते हैं तो बुद्धि वहीं जाती है कहां, जहां पर कोई पेंडिंग काम पड़ा होता है, अधूरा काम होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फुलफिल नहीं कर पाए तो बुद्धि उधर जाती है। इसीलिए कोई भी काम हम अभी पेंडिंग ना छोड़े, मानो विल बनानी है, विल बना के पूरा करके रख जाए। कोई काम है, बच्चे को समझाना है, सास का बहू को समझाना है, कोई बात चाबी देनी है कोई, तो वो सारे काम जितना निपटा के रखेंगे उतना हल्के हो जाएंगे, नहीं तो वहीं पर ही वो बुद्धि रहेगी और अंत समय में वो बुद्धि प्राण को, आत्मा को इस शरीर से निकलने नहीं देगी, वही बात याद आती रहेगी। और अगर कष्ट पूर्वक निकली तो फिर से वहां जन्म लेना पड़ेगा वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसीलिए कोई भी हिसाब किताब ना रहे, हमें ये देखना है पेंडिंग काम, अधूरा काम ना रहे, क्योंकि अंत मते सोगति का जो गायन है ना, वो इसी समय का ही है। इसलिए ऐसा कोई काम बाबा का भी देखा, पहले बाबा हम लोगों को बहुत समय देते थे, आओ बच्चे अपनी हिस्ट्री बताओ, जीवन कहानी बताओ, लिख करके दो। और बाद में तो ऐसा होता था एक दो लाइन ही बोलते थे, बाबा कहता था बच्चे बाबा समझ गया, कोई उसकी बात नहीं है। और इस तरह बाबा बता करके और फिर अपने कार्य में लग जाता था। तो 17-18 जनवरी को क्या देखा हमने, हम तो आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आसाम, तो बाबा ने कैसे युक्ति से ना बस संदेश देके हमें अपने पास बुला लिया और हम इतना दूर आसाम से 17 जनवरी की सुबह बाबा के पास यहां पहुंच गए। और 17 और 18 जनवरी को हमने देखा बाबा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति, बिल्कुल ऐसी स्थिति जो हमें आपको सबको अपने जीवन में धारण करनी है, लानी है, और उसके आधार पर ही हमारा अंतिम जन्म के आधार पर ही आगे का पूरे जन्म होंगे। आप सब में भी कई नौकरी वाले भी बैठे होंगे, रिटायर हुए होंगे या होने वाले होंगे, तो एक LPC होता है ना, लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है। जब तक आदमी नौकरी में होता है और लास्ट डे जो सैलरी वो ड्रॉ करता है, जो तनख्वाह मिलती है, उसके आधार पर ही पूरा पेंशन डिसाइड होती है, ग्रेजुटी डिसाइड होती है, प्रोविडेंट फंड डिसाइड होता है, सब कुछ लास्ट पे सर्टिफिकेट, आखिरी दिन आपकी जो पे है। तो इसमें हमें भी देखना है जो हमारा ना लास्ट डे, लास्ट श्वास, उस समय जैसी हमारी स्थिति होगी लास्ट श्वास के आधार पर ही आगे आने वाले हमारे संपूर्ण जन्मों का आधार होगा। इसीलिए लास्ट जो है ना, हमें अपना देखना है कि जब मेरे प्राण स्तन से निकले तो उस समय और कोई भी चीज बुद्धि में ना हो कि ये काम करना है, ऐसे करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ये कर नहीं, बस हाँ बाबा हम आपके पास आए, अब मेरा इस शरीर से हिसाब पूरा हुआ, मैं आपके पास आई कि आई आत्मा। ऐसी मानसिक स्थिति जब होगी उसके आधार पर ही हमारे सारे जन्मों का आधार होगा। इसके लिए क्या करें, बाबा को देखा हमने जब अंतिम दिन था, 18 जनवरी का दिन था, तो बाबा ने सुबह से ही ना बस बहुत ईशु दादी को बोला जितने लेटर लिखवाने हो लिखवा लो, कोई पेंडिंग ना रह जाए। बाबा ने कहा मकान नक्की लेक पर जो म्यूजियम है वो मकान लेने की बात चल रही थी, तो कई दिन से पेंडिंग पड़ा था, बाबा ने उस दिन फाइल पर साइन करके हाँ बच्चे इस मकान को ले लो और इसे हम सेवा में लगाओ। रोज क्लास होती है रात को 9 बजे, जैसे यहाँ उस दिन बाबा ने शाम को 6:30 बजे जमुना प्रसाद भाई को बुला के कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा तो बच्चों को सबको बता दो 7 बजे सब आ जाए। तो सब बच्चे भोजन आदि करके 7 बजे पहुंच गए क्लास में और बाबा भी 7 बजे क्लास में आ गया। तो देखो हर काम बाबा ने संपूर्ण रीति से, ये क्लास भी प्रीपोन्ड कर ली, क्योंकि अगर नॉर्मल रीति से क्लास होती तब तक तो बाबा का शरीर छूट गया था। तो पहले से आभास होना जरूरी है, वो तब होगा जब हमारी क्लियर क्लीन बुद्धि होगी, तब हमें आभास हो जाएगा। जैसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, आगे आने वाली घटनाएं आभास करा देती हैं क्या होने वाला है। इसी तरीके से हमें क्लियर आभास हो जाना चाहिए, हाँ बस अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ, अब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के जा रही है। और बाबा को आभास हो गया था, इसीलिए बाबा ने ये सब काम बिल्कुल हाई प्रायोरिटी पर करके और उस दिन क्लास करके बाबा ने क्लास में भी बोला हाँ अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। हम तो बाबा के सामने बैठे थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास करा रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति होती है आत्मा की कर्मातीत अवस्था की, तो कैसा आभास होता है, उसके सिम्टम क्या है, हम कैसे समझें कि मेरी जो है स्थिति अब कर्मातीत अवस्था जैसी हो रही है। किसी को भी देख के हम कैसे आभास करें, तो उसका सबसे बड़ी बात यह है जो एक कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। एक तो हमारा अपने मन के संकल्पों पर इतना तगड़ा नियंत्रण हो जाएगा कि मन जीत हम बन जाएंगे तुरंत ही। और जब मन जीत होंगे तो क्या होगा, हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम दूसरे के संकल्पों को तुरंत पढ़ लेंगे और उसकी मन की इच्छा को पूर्ण कर देंगे जो भी उसके। ये कर्मातीत अवस्था के लक्षण हैं कि हम दूसरे के संकल्पों को पढ़कर उसकी इच्छा को पूर्ण कर सके। उस दिन हम 18 जनवरी को बाबा क्लास ऐसे संदली से चला रहे थे, हम सामने बैठे हुए थे, हमारे मन में भी संकल्प आया बाबा कुछ बोले हमारे लिए व्यक्तिगत रीति से। तो जैसे ही हमने संकल्प किया, और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, तो हमने संकल्प किया बाबा तक पहुंचा, तुरंत ही हमने कहा नहीं, तुरंत ही बाबा ने हमारा नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार कर दिए और जो बस एकदम ऐसे 100% सत्य सिद्ध हुए। तो भाव क्या है कि हमारा अपने मन के, बाबा का तब तक अपने मन के संकल्पों पर इतना नियंत्रण हो गया था कि बस हमने संकल्प किया, तुरंत बाबा ने पढ़ा और इच्छा पूर्ण की। ये हमने 17 और 18 जनवरी को दिन में 5-6 बार अनुभव किया, बाबा के पास जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, ऐसी बात पूछेंगे, सेवा की ये बात पूछेंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि देते थे, थोड़ा दृष्टि दी, फिर मन के भाव को पढ़ लेते थे। अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। मतलब हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में क्या चल रहा है बाबा प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी कर देते थे। यह है कर्मातीत अवस्था की आत्मा का एक और लक्षण, महान लक्षण। और ये कब होगा? जब हमने अपने संकल्पों के ऊपर ना, व्यर्थ संकल्पों पे विजय पाई हुई होगी। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले एक मुरली में कहा था, संदेश में कहा था कि बच्चों ने विकारी संकल्पों पर तो विजय पा ली है बहुत हद तक, अब उनके विकारी संकल्प नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बच्चों के चलते। तो इसीलिए अभी बाबा क्या चाहता है कि हम बच्चों के व्यर्थ संकल्पों के ऊपर भी पूरा नियंत्रण हो जाए। तो एक तो ये बाबा ने वो कहा, तो मन के ऊपर हमारा इतना नियंत्रण हो जाए कि व्यर्थ कुछ भी कोई आए, संकल्प ही वो ही पैदा हो जो सिद्ध होने वाला, व्यर्थ संकल्प ही मन के अंदर ना। और ये जब तब होगा, कब? जब हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प कोई भी होंगे नहीं। और उस दिन क्या देखा, 18 जनवरी को रात्रि क्लास बाबा ने कराई, और बाबा ने कहा इस शरीर के साथ सबसे तुम्हारा बहुत गहरा संबंध है, आत्मा का शरीर के साथ ही सबसे निकट का संबंध है, ये 24 घंटे तो आत्मा इस शरीर में ही रहती है। तो उसमें बाबा ने बताया कि ये शरीर के साथ संबंध है आत्मा का, तो इस कारण से आप बच्चों का ये पेपर भी सबसे बड़ा और कड़ा पेपर है अंत समय का। कैसे? कि अंत समय में ना, बाबा ने कहा मुख्य जो बच्चों के कई प्रकार के पेपर होंगे, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा पेपर शरीर का पेपर। तो क्या होगा? क्योंकि जब शरीर में बहुत दर्द होगा, व्याधि होगी, कष्ट होगा, लेकिन ये सब होते हुए भी आपको उस कष्ट की महसूसता ना हो। महसूसता होगी तो दर्द होगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बाबा कहां याद रहेगा। इसके लिए ही बाबा ने कहा है कि इस पेपर को पास करने के लिए कैसा स्थिति होनी चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए, जब चाहे हम शरीर से न्यारे हो जाएं, जब चाहे हम शरीर में आए और तब आकर के पार्ट बजाएं, जब चाहे हम इससे डिटैच हो जाएं। और ये बाबा की अवस्था ऐसी पक्की थी, हम देखते थे बाबा के पास पार्टी आने वाली होती थी, कुछ मिनट बाकी होते थे, बाबा एकदम जैसे देह से न्यारे हो जाते थे। फिर ब्राह्मणी आके कहती थी, बाबा बाबा मैं फलानी पार्टी लाई हूं, आपको इनसे मिलना है, तो बाबा जैसे कोई ध्यान में नहीं होते थे, लेकिन तब शरीर में जैसे खिंचके आते थे और अच्छा बच्ची आओ, बच्चे आते थे, बैठते थे, बाबा उनके साथ वार्तालाप करते थे, और इस प्रकार से फिर बाबा डिटैच हो जाते थे। तो इसीलिए शरीर में जब चाहे हम आए, पार्ट बजाएं, और जब चाहे हम शरीर से न्यारे हो जाए, ये प्रैक्टिस हम बच्चों को बहुत पक्की होने की जरूरत है। और जितना ये प्रैक्टिस पक्की होगी, उतना उतना हम सहज रीति से ना देह से न्यारी हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा है अभी से बच्चों को ये अभ्यास होना चाहिए, कोई भी बात हो जाए, घटना हो जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, पेपर आ जाए, लेकिन हम साक्षी होकर के उस दृश्य को देखें, साक्षी दृष्टा। तो साक्षी दृष्टा कैसे होंगे हम, इसके लिए शायद पहले भी डिस्कस कभी हुआ, साक्षी दृष्टा में बाबा ने 5 बातें विशेष बताई है कैसे हम साक्षी दृष्टा होके पार्ट प्ले कर सकते हैं। पहली बात, साक्षी दृष्टा का है ना, तो दृष्टा क्या है? आत्मा, और ये आंख है दृष्टि। साक्षी दृष्टि नहीं, साक्षी दृष्टा। तो हम इन नेत्रों के द्वारा देखते हैं, ये है दृष्टि, आत्मा है दृष्टा। तो मैं दृष्टा इन दृष्टि के द्वारा देख रही हूं। एक तो ये अनुभूति होनी चाहिए, मैं देखने वाले अलग और दृश्य एक अलग है। तो एक साक्षी दृष्टा, एक ये दृष्टि, तीसरी चीज है दृश्य, जो दुनिया के जो भी दृश्य देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं, कोई भी घटना देख रहे हैं, बस वो दृश्य है। तो मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही है, ये स्थिति हो। चौथी चीज, जब हम ये दृश्य देखते हैं इस स्थिति में स्थित रहकर, तब ही हमारे दृष्टांत बनते हैं। द्वापर युग से जो भी इतिहास लिखा जाएगा भक्त आत्माओं का, महान आत्माओं का, वो हम ही तो हैं, और कौन है? जितने भी बड़े बड़े, कोई नरसिंह मेहता होके गए हैं, कोई मीराबाई, कोई वो, हमारे ही तो वो है। भक्ति मार्ग में द्वापर युग में हमने ऐसी ऐसी भक्तियां की हैं, नवदा भक्ति की है, तो इसलिए दृष्टांत हमारे लिखे गए हैं, तो वो तब हमारा दृष्टांत बनता है। और पांचवी चीज, ये सब निर्भर करता है हमारा दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण होगा, वैसा ही हम साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित हो पाएंगे। तो ये पांच बातें, साक्षी दृष्टा, दृष्टा आंख, दृष्टि ये नैन, और दृष्टांत हमारा बनाया जाता है, जो सामने देख रहे हैं वो सब दृश्य है, और हमारा दृष्टिकोण कैसा है। इन पांचों बातों पे अगर अटेंशन रहेगा, अंत समय हम ऐसे साक्षी दृष्टा बन जाएंगे ना, जो कहा है कि ये संसार जो है खेल है, ड्रामा है। किसका खेल है? पुरुष और प्रकृति का खेल। पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने ये पांच तत्वों से बना शरीर। तो पुरुष और प्रकृति का ये खेल है। तो ये पुरुष और प्रकृति के खेल में हम विजयी तभी होंगे जब ये पुरुष जो है ना, आत्मा, ऐसा पुरुषार्थ करेगी कि ये प्रकृति जो है पांच तत्व, ये आत्मा को अपने में बांध नहीं पाए, खींच ना सके। अभी तो शरीर खींचता है, आत्मा निकलते निकलते भी नहीं निकल पाती, जो भी उसका संकल्प उसके आधार पर टिकी रहती है। इसीलिए कहते हैं भाई देखो, इसकी आत्मा नहीं निकल रही, बेटे का इंतजार कर रहा है, या ये है या वो, कहीं ना कहीं इसकी आत्मा अटकी हुई है। ऐसा ना हो, कोई भी हो स्थिति, लेकिन हम सहज रीति से अपने प्राणों को त्याग करके हाँ बाबा आपके पास आए। और बस उस दिन भी बाबा ने, हम तो सम्मुख बैठे हुए थे, बाबा ने मुरली चलाई और बाबा क्लास के बाहर आए। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा गए अपने कमरे में जाके, दादी के हाथ में हाथ, और बाबा ने देह त्याग कर दिया। लेकिन ये प्रकृति पर विजय का प्रतीक क्या है, उसका पहले भी हमने शायद एक बार बताया कि नहीं, कि बाबा ने ये शरीर छोड़ दिया, लेकिन दीदी बाहर थे, टूर पर थे, तो दीदी का इंतजार हो रहा था। तो उसमें क्या कि बाबा ने जब ये शरीर रखा रहा बाबा का 65-70 घंटे तक, 18 जनवरी के रात को अर्ली नाइट में बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन न कोई इंजेक्शन दिया गया था बाबा के शरीर को, न कोई उसमें दुर्गंध आई, न शरीर काला पड़ा, बिल्कुल ऐसा ही चमकता रहा बाबा का शरीर। और बस वो इस बात का प्रतीक है कि बाबा ने प्रकृति जीत बाबा बन गया था, पांच तत्वों के बने शरीर पर भी विजय प्राप्त कर ली। तभी तो कोई दुर्गंध नहीं, कोई नहीं। ऐसे ही हम बच्चों को भी प्रकृति जीत बनना है, मन जीते तो बन रहे हैं, रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, मन को जीतने के लिए संकल्पों पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करने, वो तो ठीक है, लेकिन प्रकृति जीत कैसे बने? और उसी के लिए बाबा ने कहा प्रकृति जीत बनने के लिए क्या करना है आपको, प्रकृति जीत बनने के लिए ये पांच तत्वों के ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो रोज इन पांचों तत्वों को भी हम कम से कम भी 5 मिनट रोज योग का दान दें। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, आकाश तत्व दिखता ही है, धरती भी दिखती है, वायु भी चारों तरफ है, बस जिस जगह थोड़ा जल का भी हो और सूर्य का प्रकाश हो, ऐसी जगह खड़े होकर के हम इन पांचों तत्वों को योग का दान दें। उससे क्या होगा, प्रकृति जीत, ये प्रकृति हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। प्रकृति मृत्यु का कारण अगर बनी, मानो ये बैठे हैं यहां और ऊपर से अर्थक्वेक आया, छत गिरी, मानो बिल्डिंग गिरी, और उसकी वजह से अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो फायदा क्या हुआ? हमारी मृत्यु होनी चाहिए कैसी, भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु। ये नहीं कि हम प्रकृति के वशीभूत होकर शरीर छोड़े, बल्कि भीष्म पितामह की तरह, हाँ बाबा अब हम अपना ये शरीर त्याग करके आपके पास आए कि आए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। वो कब होगा? वो तब होगा जब हमारे संस्कार इन प्रकृति के तत्वों के संस्कारों से मैच करते रहेंगे। एक एक संस्कार बस हम देखेंगे, ज्यादा नहीं, वैसे तो बहुत संस्कार हैं, लेकिन अर्थक्वेक के कारण हमारी मृत्यु न हो, जितना बड़े से बड़ा अर्थक्वेक आए लेकिन हमारा बाल बांका न हो, ये कब होगा, कौन सा संस्कार धारण करने से होगा? हाँ, पृथ्वी का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है? सहनशीलता। और पृथ्वी का संस्कार है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है, एक बीज बो पेड़ निकल आएगा, 1000 बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी दाता है, जमीन से हमें पानी मिलता है, गेहूं मिलता है, अनाज मिलता है, फल मिलता है, सब्जी मिलती है, सब चीज पृथ्वी से मिलती है, पृथ्वी दाता है। ऐसे ही मेरे में दातापन का संस्कार अगर होगा ना, तो कभी भी पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना फ्रेंड बना लिया। फ्रेंडशिप उन्हीं के बीच में होती है जिनके संस्कार सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हीं के बीच में। शराबी की शराबी से फ्रेंडशिप होगी, फिल्म देखने वाले की फिल्म देखने वाले से, जैसे भी अच्छे या बुरे संस्कार वालों में आपस में मित्रता तभी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी सदा हमारी सहयोगी रहे, कभी भी उसके कारण हमारा बाल बांका न हो, हमें दाता बनना पड़ेगा। कोई भी हमारे सम्मुख आए खाली हाथ ना जाए, लेकर के जाए, कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, लेकिन ऐसा लेकर के जाए, वो क्या, पृथ्वी दाता है, सहनशीलता, प्रेम, सद्भावना, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, ये भाव अगर हरेक के प्रति होगा तो क्या होगा, पृथ्वी के समान हमने अपना संस्कार बना लिया दातापन का, तो कभी भी पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसे जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? शीतलता। और जल का संस्कार होता है एडजस्टमेंट का। जल को गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो, चम्मच में, कटोरी में लो, कटोरी में, हर चीज में, हर सिचुएशन में वो अपने को एडजस्ट कर लेता है। ऐसे मुझे भी ये देखना है, मैं हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होके चल सकूं। ऐसा नहीं कि भाई सास के साथ नहीं चल सकती, बहू के साथ हो गया, बाप का बेटे के साथ नहीं हो गया, फ्रेंड के साथ एडजस्ट होके चल सके, नहीं, कोई भी ऐसा ना हो जिसके साथ हम एडजस्ट होके न चल सके। इसका मतलब हमने जल का तत्व का गुण धारण कर लिया एडजस्टमेंट का, तो फिर क्या होगा कि जल के कारण जितना बड़े से बड़ा पेपर आएगा, सुनामी आए, फ्लड आए, बादल, क्लाउड बर्स्टिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, हमारी दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल का सबसे बड़ा गुण एडजस्टमेंट का है, फ्लेक्सिबिलिटी का है। मैंने भी अपने संस्कारों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी धारण कर ली, इतना एडजस्टमेंट का गुण धारण कर लिया, हरेक के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ये है अगर हम जल के साथ मित्रता चाहते हैं और जल हमारा बाल बांका भी ना कर सके, चाहे चारों तरफ अर्थक्वेक होगी, फ्लड होगा, सुनामी होगी, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों के बुद्धि क्लीन क्लियर होगी, उनके पैर ऑटोमेटिकली वहीं बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। ऑटो सोचना नहीं पड़ेगा इधर जाऊं या इधर जाऊं, नहीं, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी और फिर सफलता को पा जाएंगे। ऐसे ही और वायु का क्या गुण होता है, मुख्य क्या होता है, वायु प्राण वायु है, वायु के कारण ही तो हम जी रहे हैं, श्वास लेते हैं वायु जाती है, प्राण वायु, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऐसे ही वायु का जो गुण है कौन सा है, हल्केपन का। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। तो इसीलिए अगर हम हल्के रहने का गुण हमारे अंदर आ गया कि कोई भी परिस्थिति में हम भारी ना हो, कोई भी संबंधों में कटुता आ जाए, किसी का कोई भी ऐसी बात हो जाए, घटना, हम भारी ना हो, हल्के रहेंगे तो क्या होगा, जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, बवंडर आएंगे, 200-300 मील की रफ्तार से हवा बहेगी, कुछ भी होगा, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वायु को अगर हमने अपना मित्र बना लिया, वायु की तरह हल्के रहना सीख लिया, कोई परिस्थिति आए उसमें हम भारी ना हो, तो क्या होगा, हमें सदा हम विजयी होकर के निकलेंगे। ये वायु का गुण है, मैं एक एक गुण सिर्फ बता रहा हूं। ऐसे ही आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, हैं? विशालता, कितना विशाल है, और महानता। ऐसी अगर हमने ये विशालता महानता का गुण अपने हृदय में धारण किया होगा तो क्या होगा, उसका प्रूफ क्या है, हमने विशालता धारण की, उसका प्रूफ ये है, हमें किसी की कमी कमजोरी को स्थान हम अपने दिल में नहीं देंगे, क्षमा भाव हो जाएगा। और जितना क्षमा भाव होगा ना, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो ही क्षमा कर पाएगा। इसीलिए एक अपने को ये देखते चलना है कि मैं कैसे महान वीर हूं, उसके लिए आकाश जैसी विशालता धारण की होगी, क्षमा भाव। और क्षमा कब हो सकती है, किसी को हम क्षमा कब कर सकते हैं, जब उसकी बात को दिल में स्थान नहीं देंगे, उसकी कमी कमजोरियों को भूलने की क्षमता होगी। हर मनुष्य पे दो शक्ति होती है, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। तो इसीलिए भूलने का गुण हम यहां इस्तेमाल करें, उसका ये ध्यान न दें, तो क्या होगा, महानता आ जाएगी। और लास्ट में कौन सा तत्व रह गया, अग्नि। अग्नि में कौन सा विशेष गुण होता है, हैं? हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती अग्नि। तो हमने भी ऐसा ज्ञान योग अग्नि का रूप धारण किया हुआ हो तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति आए उसका रूप बदल जाए। बाबा कहता है रोता हुआ व्यक्ति आए आपके वॉल्केनिक योगा, हाँ? योग ज्वालामुखी योग की स्थिति में वो देखे उसका रूप परिवर्तन हो जाए, रोता हुआ आए हंसता हुआ चला जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में डुबकी लगाती हुई चली जाए। उसका रूप बदलने की क्षमता कब होगी, जब हमने ज्वालामुखी योग अपने अंदर धारण किया हुआ होगा। तो इस तरीके से ये बाबा की जो स्थिति देखी, बाबा के सम्मुख जाते थे हम ये पूछेंगे, कई प्रश्न होते थे, और जैसे ही बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, सब कुछ भूल जाता था, कुछ याद नहीं रहता था हम ये पूछना है। क्यों? वही तो उसने रूप बदल दिया ना, प्रसन्न रूप हो गया है, प्रसन्न चित रूप हो के चले जाते थे। ये है एक्चुअली महानता का गुण, कर्मातीत अवस्था के लक्षण। हमें भी अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि कोई भी आत्मा कोई भी लेकर के आए, लेकिन हमारे सम्मुख आते हमसे दृष्टि लेते लेते उसका प्रसन्न का रूप ही बदल जाए और प्रसन्नचित होके चली जाए। तो ये तो मैंने कुछ थोड़ा सा ऐसी बातें बताई जो बाबा के समान हम बच्चों को भी कर्मातीत अवस्था में 18 जनवरी को भी देखा। इसीलिए बाबा का ये शरीर भी ना अंत समय में क्या हुआ, जरा शरीर में अकड़न नहीं थी। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर स्टिफ हो जाता है ना, अकड़ जाता है, लेकिन 65 घंटे के बाद भी बाबा के शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। हम लोगों ने बाबा को स्नान कराया शांति स्तंभ में, वहीं अग्नि संस्कार बाबा का किया गया था, यहां पर यहां लाए यहां पर, लेकिन फिर भी बाबा के शरीर में यह है बाबा की प्रकृति जीत की स्थिति। इतना 5 तत्वों के ऊपर बाबा ने इतना विजय प्राप्त कर ली कि अंत समय में प्रकृति ने भी बाबा का पूरा पूरा साथ दिया। तो जब ब्रह्मा बाबा हो सकता है, वो भी तो हमारे आपकी तरह हड्डी मांस का शरीर का ही ऐसा था, तो जब वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हम और आप नहीं कर सकते हैं? एज द फादर सो द सन, जैसा पिता वैसे हम बच्चे, तो हमें अपने अंदर इस स्थिति को धारण करना है। चलो अभी तो 10 बज गया, समय हो गया, लेकिन ये कर्मातीत ये लक्ष्य लेके जाए मुझे हर हालत में ब्रह्मा बाप समान बन के कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है और विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।